हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय, निताय गो प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम सातवां स्कंद पांचवा अध्याय। हिरण्यकशिपु का साधु पुत्र प्रहलाद। श्लोक संख्या 31। न ते विदुः स्व अर्थ गतिं हि Vishnum Durashayaha Ye Bahihi Artha Maninaha Andhaha Yatha Andhaihi Upaniyamanaha Te Api Isha Tantriyam Uru Damne Baddhaha Nate Viduhswartha Gatim Hi Vishnum Durashayaye Bahirartha Maninaha Andhaya Thambai Rupaniya Mana Te Pisha Tantriyam Urudam Nibaddhaha Nate Viduhswartha Gatim Hi Vishnum Durashayaye Bahirartha Maninaha Andhaya Thambai Rupaniya Mana Te Pisha Tantriyam Urudam Nibaddhaha Nate Viduhswartha Gatim Hi Vishnum Durashayaye Bahirartha Maninaha Andhaya Thandai Rupaniya Mana Te Pisha Tantriyam Urudam Nibaddhaha Tantriyam Urudam Nibaddhaha Nate Viduhswartha Gatim Hi Vishnum Tantriyam Urudam Nibaddhaha Nate Viduhswartha Gatim Durashayaye Bahirartha Maninaha Andhaya Thambai Rupaniya Mana Te Pisha Tantriyam Urudam Nibaddhaha Na Nahi Te Unke Dham Ko Durashayaha Is Bhautik Jagat Ka Bhog Ke Ichchuk Ye Jo Bahihi Bahya Indriya Vishay अर्थ मानिनः महत्वपूर्ण मानते हुए अंधाः अंधे व्यक्ति यथा जिस प्रकार अंधे ही दूसरे अंधे व्यक्तियों भौतिक प्रकृति की रस्सियों नियमों को उरु अत्यंत शक्तिशाली दामनी रस्सियां बद्धाह बंधी हुई। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद: जो लोग भौतिक जीवन के भोग की भावना द्वारा दृढ़ता से भगवत धाम को वापस जाना तथा भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहना है, जिस प्रकार अंधे व्यक्ति द्वारा ले जाया गया दूसरा व्यक्ति सही मार्ग भूल सकता है और गड्ढे में गिर सकता है, उसी प्रकार भौतिकता से आसक्त व्यक्ति अन्य अपने ही जैसे व्यक्ति द्वारा मार्ग दिखलाए जाने पर सकाम कर्म की रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं, जो अत्यंत मजबूत धागों से बनी होती हैं, और ऐसे लोग तीनों प्रकार के कष्ट सहचिपों की आलोचना उसके पुत्र प्रहलाद महाराज द्वारा की जा रही थी, तो उसे इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए था कि वे उसकी जीवन शैली से सहमत न थे। तो भी हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रुद्ध था और अपने पुत्र को अध्यापक या गुरु का उपहास करने के लिए डांटना चाहता था, क्योंकि उसके अध्यापक के ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे। शुक्र शब्द का अर्थ है वीर्य और आचार्य गुरु का सूचक है। आदि काल से वंशानुगत गुरुओं को मान्यता प्राप्त होती रही है, किंतु प्रहलाद महाराज ने ऐसे जन्मजात गुरु को या उसके उपदेश को ग्रहण करने से इनकार कर दिया था। भौतिक सफलता के इच्छुक रहते हैं। बहिरर्थ मानिनः। बहिः शब्द का अर्थ है बाह्य, अर्थ का हित तथा मानिनः का अर्थ गंभीरता से लेना होता है। एक तरह से सभी लोग आध्यात्मिक जगत पे से अनभिज्ञ हैं। भौतिकतावादियों का ज्ञान इस भौतिक जगत की 400 करोड़ मील की सीमा तक संकुचित है, जो सृष्टि का अंधकारमय अंश है। वे ये नहीं जानते कि इस भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक जगत भी है। जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं होता, वह आध्यात्मिक जगत के अस्तित्व को नहीं समझ सकता। ऐसे गुरु जो इस भौतिक जगत में ही रुचि रखते हैं, वे अंधे कहे गए हैं। ऐसे अंधे उन अनेक अंधे अनुयायियों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, जिन्हें भौतिक दशाओं का सही ज्ञान नहीं है, किंतु ऐसे लोग प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। ऐसे अंधे गुरु बाह्य भौतिक जगत में रुचि रखने के कारण सदैव प्रकृति की मजबूत रस्सियों से जीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. आप सबका हार्दिक स्वागत श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में है, और आज के दिन विशेष स्वागत, क्योंकि बाहर इतनी बरसात हो रही है, फिर भी आप सब इतना कष्ट उठाकर यहाँ पर आए, इससे ही हम जान सकते हैं कि आप इस भक्ति के मार्ग को कितने गंभीरता से स्वीकार कर रहे हैं। हम सब मिलकर श्री श्री राधा गोकुलानंद के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि इस बच्ची की आत्मा की वो रक्षा करें, को सदैव अपने चरण कमलों में आश्रय प्रदान करें, और जिस गति को वो बच्ची या वो आत्मा प्राप्त करेगी आगे चल के, वो अवश्य भगवान के शरण में ही होगा। तो अंतिम क्रियाओं के लिए हमारे मंदिर से भी कई भक्त गए हुए हैं, तो आज का प्रवचन, आज का कीर्तन इस बच्ची के लिए हम समर्पित करते हैं। तो भागवत कथा करना, भगवत गीता की कथा करना, ये एक ऐसा कार्य है जो सुख में दुख में उपयुक्त है। कई ऐसे चीजें होती हैं जो केवल दुख में कहे जाते हैं, कोई ऐसी चीजें होती हैं केवल सुख में कही जाती हैं, परंतु भागवत कथा और हरि नाम हर अवस्था में हमें कर लेना चाहिए। अभी हम शुरुआत करते हैं थोड़े छोटे छोटे कहानियों से। कहानियां शब्द कहने से आपके चेहरे खिल उठे हैं, दर्शन या तत्व की बात करते हैं तो सबको धीरे धीरे फिर नींद आने लगती है। एक छोटी सी कहानी सत्य है, अनेक वर्ष पूर्व की बात है, 40-50 वर्ष होगा पता नहीं, कभी अफ्रीका में तो एक विमान का अपघात हो गया। छोटा विमान था वो, उसमें शायद 20-25 लोग थे विमान चालक को मिलाकर, तो सबकी हत्या हो गई, परंतु एक व्यक्ति वहां बच गए। बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे वो भी, परंतु बच गए अंततः। तो लोगों को जानना था, जो अधिकारी व्यक्ति थे, कि ये विमान आसमान से गिरा क्यों और इस तरह का अपघात हुआ क्यों। जब कोई बच नहीं जाता है तो फिर जानना बहुत मुश्किल होता है, परंतु एक व्यक्ति बच गए थे। तो जब उनको होश आया तो अधिकारी व्यक्तियों ने उन सब से जाकर बात की कि हुआ क्या हवाई जहाज में, कि जिसके कारण ये आसमान से नीचे गिरकर जमीन पर गिर पड़ी। तो उस व्यक्ति ने बात बताई, कहा कि ये छोटा विमान है और हम लोग केवल 20 आदि लोग थे वहां पर, तो जो भी सामान आदि है वो पीछे यात्रियों के पीछे की तरफ रखा जाता है, तो वहां सामान रखा गया था। अब हुआ ये था कि एक यात्री ने अपने सामान में एक छोटे से मगरमच्छ को रखा था। अब हो सकता है उन दिनों में इतनी सुरक्षा जांच नहीं होती थी जैसे आजकल होता है, ये सुरक्षा जांच की बात तो केवल 50 से शुरू हुई है, 40-50 साल पहले, इसके पहले आतंकवाद इस तरह का नहीं होता था ना, तो सुरक्षा जांच भी नहीं होती थी, ऐसे लोग अंदर चले जाते थे। तो उस समय किसी यात्री ने उसके थैली में एक छोटा सा मगरमच्छ रखा था, इतना बड़ा भी नहीं था वो कि सबको खा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा छोटे जैसे ऐसे कुछ खा ले, थोड़ा सा डस सकता है। परंतु जैसे ये मगरमच्छ निकल पड़ा, किसी न किसी तरह विमान था, और विमान में जो वजन होता है उसको संतुलित रखना चाहिए, सारा जो वजन एक तरफ हो जाएगा तो विमान जो है वो झुक जाएगा, और ऐसे ही हो गया, सारी भीड़ जो थी वो एक तरफ आ गई तो विमान ऐसे झुक गया। जब झुक गया तो विमान चालक ने चिल्लाकर सबसे कहा, पीछे जाओ अभी, ताकि संतुलन विमान का ठीक से कर सके। परंतु अब विमान इस तरह से झुक गया था कि उनको ऊपर जाने के लिए संभव नहीं था, तो उस वजन के कारण फिर वो नीचे गिर पड़ा, अपघात हो गया और एक आदमी के सिवाय सभी लोग घायल होके मर भी गए। तो ये जो मगरमच्छ था, बाद में पता चला वो आराम से जब निकल पड़ा पीछे से, क्योंकि वो पीछे था, पीछे के भाग को कुछ ज्यादा हुआ नहीं, ये भी एक व्यक्ति था, हो सकता है वो पीछे की तरफ था, मगरमच्छ को कुछ हुआ नहीं। जब विमान का टक्कर हो गया जमीन से तो आराम से मगर निकल के कहीं तो चला गया। तो ये एक कहानी है, सत्य कहानी है। अभी इससे आप सोच लीजिए कि क्या हम सीख सकते हैं, बाद में जो सबक है इसकी चर्चा करेंगे। और एक सत्य घटना आपको के बारे में आपको बताएंगे। बंबई में 2-4 साल पहले ही हुआ था, 5 साल पहले, एक पुल था जो रेल लाइन के इस पार से उस पार में था, तो लोग पुल के ऊपर, और आप तो जानते हैं कि बंबई शहर में तो भीड़ बहुत होती है, रेलगाड़ियों में तो इतनी भीड़ होती है कि बस इसके बारे में क्या कहे। तो शाम का समय था, सब लोग दफ्तर से लौट के आ रहे थे और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे उस पुल के ऊपर, बहुत पुराना पुल था। तो कुछ पुल में कुछ आवाज आया होगा, कुछ तो हुआ होगा, तो किसी ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि पुल गिर रहा है। यदि वो ध्यान से रुकते तो देखते कि पुल को कुछ नहीं हो रहा था, टिक सकता था। यदि शांति से वो लोग अपने बुद्धि को ठिकाने रखते तो आराम से एक एक कतार में रख के वो नीचे उतर जाते, सब कुछ ठीक ठाक हो जाता। परंतु सोचा नहीं उन्होंने, जैसे भीड़ चिल्लाया, भीड़ एक तरफ से चली, सब लोग भाग के चले गए। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती हैं, कभी कुंभ मेला में हम भी कुछ सुनते हैं, कभी अलग अलग मंदिरों में जब बड़े बड़े उत्सव होते हैं उस समय भी ऐसे हो जाता है, कभी बड़े बड़े खेल के मैदानों में जब हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं उस समय भी ऐसी सब चीजें हो जाती हैं। तो ऐसे एक साथ में झुंड, जानते हैं ना, जो पशुओं का समूह होता है उसको झुंड कहते हैं। तो जब पशु इकट्ठे जाते हैं तो झुंड में जाते हैं, खास करके जब भेड़, भेड़ होते हैं ना, भेड़ी, कन्नड़ में कुरी कहते हैं, कुरी, मराठी में बकरी नहीं, बकरी अलग होता है, मराठी में भेड़ी, भेड़ी को क्या कहते हैं, मेंढी, मेंढी, मेंढे समझते हैं जिसके शरीर में ऊन होता है, तो ऊन निकालते हैं उसके गर्म कपड़े आदि बनाते हैं, मेंढे या कुरी, इसको भेड़ी बोलते हैं। तो भेड़ी की विशेषता ये होती है कि कभी अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं। थोड़े ऐसे भेड़ी की जात होते हैं जो पहाड़ों में ऊपर आदि रहते हैं, उन इलाकों में वो कभी कभी अकेले इधर उधर रह जाते हैं, लेकिन साधारण तौर से जो भेड़ी होते हैं वो इकट्ठे ही रहते हैं। और इसके पीछे भी एक कारण है कि उनके पास अपनी रक्षा के लिए कोई उपाय नहीं है। जैसे गाय बैल होते हैं, उनके बड़े सींगे होती हैं और अन्यों के बड़े दांत होते हैं, कोई ऐसे छोटे जानवर होते जिन जो जिन जहर डाल देते हैं, परंतु ये बेचारे भेड़ों के लिए कोई उपाय नहीं है अपनी रक्षा करने के लिए। तो इसलिए उनकी रक्षा एक साथ रहने में होती है। और उनका स्वभाव यदि आप देखेंगे भेड़ियों के, कि वो बड़े आज्ञाकारी होते हैं और जहां उनका झुंड जाता है बस वही वहीं जो उनके नेता होते हैं उनकी आंख बंद करके उनकी बात मानते हैं। इसलिए हिंदी में इसे क्या कहते हैं, भेड़ चाल, भेड़ चाल। जैसे बकरी चलते हैं वैसे सभी लोग इकट्ठे चले जाते हैं, बिना सोचे बिना समझे, बुद्धि का उपयोग किए बिना, बस सब लोग कर रहे हैं, हम भी कीजिए, हम भी, हमें भी करना चाहिए। कभी कभी डर के मारे, कभी अज्ञान के मारे, पाठशाला में बचपन से सुनी होगी कि एक बार एक राजा था और राजा के कोई कपड़े सिलाने थे, तो वहाँ कपड़े सिलाई करने वाला आ गया, तो उसने माप पत्र सब ले लिया और राजा ने पूछा कि कब तक दे दोगे, बाकी 1 हफ्ते में दे दूंगा। जब 1 हफ्ता समाप्त हो गया तो जब एक हफ्ता समाप्त हो गया तो अभी तक कपड़े तैयार नहीं थे, तब इस सिलाई करने वाला जो था वो तो डर गया कि भी राजा बुलाएंगे, मेरे पास कपड़े तो हैं नहीं, तो क्या करना चाहिए मुझे, मृत्यु दंड तो अवश्य मिल जाएगा, तो कोई ना कोई रास्ता तो निकालना चाहिए। जब वो गया राजा के पास, सोच समझ के आया था वो, उसने सोचा ने पूछा कपड़े दिखाओ, उन्होंने तो ऐसे करके दिखाया, कुछ था नहीं, ऐसे दो उंगलियां ऐसे पकड़ी, बीच में हवा ही था बस, कोई कपड़ा नहीं था। देखिए हे राजन, आपका कितना अच्छा वस्त्र बना है। वस्त्र कहाँ है, वस्त्र कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए कितना सुंदर, ये देखिए यहाँ कितना रंग कितना अच्छा, ये देखिए रेशम का ये कितना अच्छा है। तो राजा सारे मुझ क्या मुझे आंखें खराब हो गई है, क्या हो गया मुझे, अब ये इतने उत्साह बोल रहा है, होगा ये बोल रहा है सही होगा फिर अभी। तो उसने मान लिया उसकी बात को। तो फिर उसने कहा, दर्जी ने कहा जरा आप निकाल दीजिए कपड़े, ये पहन लीजिए। तो राजा ने अपने कपड़े निकाल लिए और ये दिगंबर बन गए वो। तो उन्होंने हवा के कपड़े पहन लिए और उनको पहना भी दिया दर्जी ने, देखो ऐसे हाँ हाथ इसमें डालिए, हाँ ऐसे डाल लीजिए इतना अच्छा। तो मंत्री ने सोचा मैं बोलूंगा तो मुझे मृत्यु दंड मिल जाएगा। तो मंत्री ने कहा, सोच के एक क्षण सोच के कहा, बहुत सुंदर वस्त्र है आपके राजा, बहुत अच्छा वस्त्र है। तो दूसरे मंत्री आए, तो दूसरे मंत्री जब आए, राजा ने कहा देखो कितने अच्छे वस्त्र, वो भी हैरान हो गया, लेकिन बाकी तीन लोगों को देखकर वो भी कहना हाँ हाँ ये अच्छा अच्छा है। फिर राजा ने सोचा कि मैं सैर करने जाऊंगा राज्य में, वैसे भी सब प्रजा से मिलने जाऊंगा, तो सड़क में उतर पड़े और चलने लगे राजा, पीछे बैंड बाजा चल रहा है, सब चल रहा है, वाद्य बज रहे हैं, वो चलते गए और उनके आगे पीछे सैनिक, सभी को बताया गया था कि राजा कितने अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं। सबने देखा कि कोई कपड़े नहीं पहन रहे हैं, लेकिन सबको डर लगा था कि अरे हम बोलेंगे कि राजा के वस्त्र निर्वस्त्र हैं तो मृत्यु दंड हमें मिल जाएगा। तो सभी लोग राजा की प्रशंसा कर रहे थे, कितने अच्छे कपड़े राजा ने पहने, वाह 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 वाह। तो ऐसे चलते पड़े चलते पड़े, तो जैसे लोग आ गए, पहले देखा उन्होंने कि राजा के वस्त्र नहीं है, परंतु दूसरों ने कहा देखो देखो कितने अच्छे वस्त्र, तो वो भी कहने लगा हाँ 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 अच्छे वस्त्र। इस तरह से जैसे वो सड़क पे चल रहे थे, सारी प्रजा एक आवाज में बोलने लगी, राजा के कितने अच्छे वस्त्र हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं राजन इन नए वस्त्रों में। एक छोटा बच्चा था वहां, अब तो जानते हैं कि बच्चे ऐसे कभी कभी बात कर जिसके कारण बड़ों को बहुत शर्म आती है। बच्चे मासूम होते हैं ना, उनको क्या पता कब क्या बोलना चाहिए, जो मन में आया वो बोल देते हैं। तो एक बच्चा था वहां पे, वो जोर जोर से हंसने लगा, कूदने लगा, कहने लगा रहे देखो देखो राजा नंगे है, राजा नंगे है, क्या बोलते हो। सबने उसको चुप कराने की कोशिश की, तो जोर से बोलने लगा देखो देखो राजा के वस्त्र नहीं है। फिर संसारी उपदेश मिले बच्चों को। तो इससे भी ये हम देख सकते हैं कि यहाँ एक ने कह दिया, दूसरे ने मान लिया, दूसरे ने कह दिया, तीसरे ने मान लिया, इस तरह से सारे लोग जो है हाँ में हाँ मिलाने लगे। तो इस तरह से संसार में हम देखते हैं बहुत सारे लोग दूसरों को देखकर उनकी नकल करना शुरू करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी भी एक मजाक की कहानी बताया करते थे। एक बार प्रभुपाद जी ने कहा कि एक ब्राह्मण रहा करता था, वो प्रतिदिन गंगा में स्नान करने जाते थे, तो अपने तांबे के पात्र को लोटे को लेकर जाते थे, क्योंकि उसमें गंगा जल ले आके भर के फिर वो अपने घर में जाते थे अपने पूजा आदि के लिए। तो गंगा स्नान कर लिया और तट पे उन्होंने अपना पात्र जो है वो कुंभ रख दिया, और अन्य बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे आते थे, वो सबके अपने अपने छोटे छोटे पात्र थे, कुंभ थे, तो वो मिल जाते थे। कभी कभी एक ब्राह्मण दूसरे के कुंभ उठा के ले जाता था, दूसरा तीसरे का अपने मेरा है समझ के उठा के ले जाते थे। तो ऐसे ये ब्राह्मण जो थे वो हैरान हो गए कि क्या करे, मेरा कोई लोटा उठा के ले जा रहा है, तो ऐसे कोई चिन्ह इस पे होना चाहिए जिससे कि लोगों को समझ में आए कि ये उनका नहीं है। तो उन्होंने एक तरकीब सोची, तो क्या किया, अपने कुंभ के ऊपर एक मिट्टी का गोला बनाया और उसके ऊपर रख दिया ताकि लोग जान लें कि यह उनका नहीं, किसी और का होगा। ये मेरे पात्र के ऊपर तो मैंने मिट्टी का गोला नहीं रखा था, तो मेरा तो नहीं है कम से कम। तो उन्होंने सोचा कि इस तरह से कम मेरा पात्र तो बच जाएगा, कोई और उठा के नहीं ले जाएगा। तो उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। पहले दिन तो ठीक हो गया, लेकिन पहले दिन जब ऐसे किया उन्होंने, तो बाकी जो वहां ब्राह्मण आते थे उन्होंने वो सोचने लगे, ये ब्राह्मण तो बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत जानकार व्यक्ति हैं, तो इन्होंने मिट्टी का गोला रखा है तो इसके पीछे भी कोई बहुत दार्शनिक बात होगी, हो सकता है भगवान इसे प्रसन्न हो रहे हैं इसलिए उन्होंने मिट्टी का गोला रखा उसके ऊपर, तो ये कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। तो सब ने फिर मिट्टी की गोले ली, अपने अपने पात्र के ऊपर रख दिए। फिर ये ब्राह्मण आ गए थे, कह रहे ये क्या, सारे जो जितने भी कुंभ थे सबके ऊपर मिट्टी का गोला है, अभी फिर से पता नहीं अपना पात्र कौन सा है। तो प्रभुपाद जी कहने लगे, ये उदाहरण है एक वृत्ति का या एक न्याय का, जिसको गडुरी का प्रवाह न्याय कहते हैं। गडुरी का अर्थात भेड़ी, एक भेड़। जैसे भेड़िया जो होता है, भेड़ को देखभाल करने वाला होता है उसको भेड़िया कहते हैं या गडरिया कहते हैं, गडेरिया या गडरिया। तो ये गडुरी का प्रवाह न्याय। आपको याद होगा पिछले 3 रविवारों से हम अलग अलग न्याय सूत्रों की चर्चा करते आए हैं। सबसे पहले दिन कौन से न्याय की चर्चा कर रहे थे हम, सुप्तोत्थित न्याय, नींद से जागने का न्याय। फिर दूसरे बार कूप मंडूक न्याय, कुएं के अंदर मेंढक का न्याय। तीसरा पिछली बार कौन सा था, अर्ध कुक्कुटी न्याय, एक मुर्गी को आधा काट देना। और आज चर्चा चल रही है गडुरी का प्रवाह न्याय। प्रवाह आप जानते हैं, प्रवाह बह के जाना। तो गडुरी का अर्थात जो भेड़ी होते हैं, जैसे भेड़ चाल में लोग चलते हैं, प्रवाह होता है ना, भेड़ चाल सब चलते रहते हैं हजारों की संख्या में, उसी तरह से हम लोग भी भेड़ चाल में चलते हैं। जो भी संसार में लोग कर रहे हैं बस उसके पीछे 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 हम चलते हैं। जो लोग कर रहे हैं वो भी हम करना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि वो लोग कर रहे हैं। हम ये नहीं सोचते ये सही है, उचित है, भला है, बुरा है, ऐसे विचार नहीं कर रहे। क्या करते, वो लोग कर रहे हैं हमें भी करना चाहिए, बिना सोचे समझे कि इसमें भला क्या है, बुरा क्या है, उचित है नहीं है, बस कर देते हैं। इसके लिए कितने सारे उदाहरण हैं, देखिए देखिए कपड़ों के बारे में फैशन आजकल कोई भी एक शुरू कर देते हैं। अब गडेरिया जो होते हैं ना, वो जो भेड़िया होता है ना, वो तो भेड़ियों को सब ले जाता है ना, इधर उधर ले जाता है, जैसे वो कहता वैसे वो भेड़ी करते हैं। उसी तरह से आजकल हमारे समाज में लोगों को भेड़ी की तरह आगे ले जाने के लिए बहुत सारे नेता हैं। वो कौन है, जैसे सिनेमा के अभिनेता अभिनेत्री हैं, जैसे वो लोग वस्त्र पहनते हैं, आजकल लोग वैसे ही वस्त्र पहनना शुरू करते हैं, वो जैसे बात करते हैं वैसे हम लोग भी बात करना चाहते हैं, उनकी वेशभूषा, जीवन शैली, बाल उनका कैसे होगा, बाल उस तरह से करते हैं। तो जो भी सिनेमा का अभिनेता अलग तरह से बाल को अपने सजाता है, सभी लोग उस तरह से बाल सजाने लगते हैं। कोई अभिनेत्री अपने बाल को उस तरह से सजाते, सभी सारे महिलाएं बाल को उस तरह से सजाने लगते हैं। कोई एक तरह का पैंट पहनता है, सभी लोग उस तरह के पैंट पहनने लगते हैं। जब हम, मुझे याद है हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो उस समय एक वस्त्र था जिसको हम बेल बॉटम बोलते थे, बेल बॉटम। किसी ने शुरू कर दिया, सारे लोग पागल की तरह बेल बॉटम लेके जाते थे, ऐसे पैंट जो ऐसे होके फिर बहुत ऐसे होता है, तो सभी लोग बेल बॉटम पहन के जाते थे। आज मैं विदेश में जाता हूँ तो वहां देखता हूँ आजकल नया फैशन शुरू हो गया है, शायद मुझे बोलना नहीं पड़े तो यहाँ भी श्लोक शुरू कर देंगे। वो क्या है, अब पैंट पहनते हैं ना लोग, तो पैंट कहाँ कमर से शुरू होता है ना, तो ये लोग कमर पे नहीं पहनते उसको और नीचे 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 ले जाते हैं, और ये कमीज जो है उसको ऊपर तक यहां तक पहनते, नीचे तक पहनना चाहिए ना, यहां तक कमीज पहनते, ये पुरुषों की बात कर रहे हैं हम, है यहां तक पहनते हैं, ठीक है। तो नीचा पीठ का भाग जो है वो सबको दिखना चाहिए, तो अपने कमीज को ऊपर कर लिया और अपने पैंट को नीचे कर दिया कमर से, और वो प्रदर्शन का की प्रतियोगिता चलती है, और कितने सारे लड़के आप देख रहे हैं वो भी ऐसे ही पहन लगे हैं, और महिलाएं भी पहनती हैं, युवतियां भी पहनते हैं, सभी लोग पहनने लगे हैं। फिर बाल, बाल के क्या कहना, रंग बिरंगी बाल, जैसे होली में यहां होती है ना अवस्था, उनके बाल कोई हरे रंग के बाल कर देते, कोई पीले रंग का बाल कर देते हैं, और कई लोग ऐसे इंद्रधनुष बाल पूरे ऐसे ऐसे, कोई पीला हरा ये वो ऐसे करके करते हैं, कोई अपने बाल को यहां से काट देते हैं केवल यहां बीच में रखते हैं। ये सब बड़े बड़े शहरों में ये फैशन माना जाता है, बहुत सुंदर लगते, वो सोचते हैं कि ये सुंदर लग रहे हैं, और ऐसे ऐसे चीजें आजकल लोग कर रहे हैं, जब वो उसमें आभूषण आदि डालते हैं इसके ऊपर, जीभ के ऊपर, फिर कान में, ठीक है कान में लगा, यहाँ लगा, ठीक है सब करते हैं, लेकिन जगह जगह यहाँ पे कर देते हैं, जीभ में कर देते हैं, कैसे इतना दर्द होता है उनको, अपने हाथ में, पैर में, पीठ में तरह तरह के चित्र आज ये वो मुद्राओं से वो कर लेते हैं, और आए दिन सारे युवक युवतियां सब लोग उसके पीछे पीछे जा रहे, वैसे ही करने जा रहे हैं, भेड़ चाल। ये है फैशन का पागलपन, हर क्षेत्र में, समाज में, खाने के लिए भी सब चल रहा है, जैसे वहां का हम भी वैसे ही उसी प्रकार की चीज खाएंगे, क्यों वो लोग भी खा रहे हैं हम भी खाएंगे ऐसे, वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं हम लोग भी उस तरह की भाषा बोलेंगे। इस तरह से लोग सोचते नहीं हैं आजकल। और एक पागलपन है फोन का, आईफोन, ये फोन वहां आ गया हमें भी चाहिए। वहां एक भक्त हमें बता रहे थे कि एक अमुक प्रकार का फोन है जो उस कंपनी ने घोषणा की थी कि अमुक दिन इसका इसका बेचना शुरू हो जाएगा उस दुकान में, तो वहां पे उस दिन सुबह को इतनी भीड़ लगी थी, इतनी भीड़ लगी थी, हजारों के लोग, बहुत भीड़, धक्का मुक्की कर रहे थे वहां पे, और इतनी भीड़ हो गई वहां, फिर जब दुकान के दरवाजे खुले तो सब लोग अंदर जाके वहां तहस नहस हो गया पूरा। वो एक फोन चाहिए था सबको, और सबने खबर फैलाई थी कि ये फोन हमको चाहिए, तो ये सुनकर दूसरों को भी लगता हमें भी चाहिए, सब लोग ऐसे एक के पीछे एक भेड़ चाल में चलते हैं, कोई सोच विचार नहीं क्यों हम कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। आजकल की दुनिया भी ऐसे ही चल रही है, चमक धमक से आकर्षित होकर सभी लोग पीछे, हमें भी चाहिए हमें भी चाहिए, क्यों, क्योंकि उसके पास है। ये कहानी तो हम बार बार कई वर्षों से बताते आए हैं, फिर भी इस समय उपयुक्त है इसलिए फिर से बताएंगे, आज थोड़े कहानियां बताने के इसमें है हम। तो एक महिला थी, तो उनको बुखार हो गया था, तो 100 डिग्री बुखार था उनको, घर में कोई थी नौकरानी, नौकरानी को 103 बुखार हो गया। तो जब वो व्यक्ति वापस घर आए तो अपने पत्नी को बुखार हो गया है इसलिए सुनकर वो पत्नी के पास गए थे, पत्नी को बहुत गुस्सा था। गुस्सा क्यों, क्या बात, बोले मुझे केवल 100 डिग्री हुआ है और मेरे नौकरानी को 103, मुझसे ज्यादा, ऐसे कैसे संभव है, मैं घर की मालकिन हूं और मुझे कम उसे ज्यादा। अरे बोला ये तो बीमारी है, बुखार है, उसे ज्यादा कम तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं मैं मालकिन हूं, मेरे पास ज्यादा बुखार होना, जो भी हो ज्यादा ही होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कभी कभी इस कहानी को भी बताया करते थे, कि समाज की क्या दशा है, इसको समझाने के लिए कि ये समाज में जिसे हम प्रगति कहते हैं ना, वो बुखार बढ़ाने वाली प्रगति सभ्यता है। उसके पास दो गाड़ियां हैं, मेरे पास केवल एक, मुझे भी दो गाड़ियां चाहिए। उसके पास इतना टेलीविजन ये वाला है, मेरे पास और भी बड़ा टेलीविजन चाहिए। उसके पास इस तरह के कपड़े हैं तो मेरे लिए भी चाहिए। अन्यों के पास ये है, उसके पास ये है, उसके पास ये है, तो मुझे भी ये चाहिए। अक्सर माता पिता के बच्चों के बारे में शिकायत करते हैं कि जब वो अपने स्कूल में जाते हैं अपने मित्रों के साथ, तो मित्रों के पास तरह तरह के खिलौने रहते हैं और फोन रहते हैं, तो उनके बच्चे घर में आके कहते हैं कि मुझे भी चाहिए क्योंकि उनके पास है। तो ये केवल बच्चों की समस्या नहीं है, बड़ों की समस्या भी है। तो सब लोग आजकल भेड़ चाल के शिकार बन गए हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में भी। इंजीनियर बनना है सबको, सब इंजीनियर पीछे सैकड़ों, आजकल 50-60% इंजीनियर को नौकरी नहीं मिल रही है। भारत में ये दशा है। इस तरह से बिना सोचे समझे बस दूसरे लोग कर रहे, हम भी करेंगे। कभी कभी पैसों के बारे में भी ऐसे लोग करते हैं। कोई शुरू कर देता है कि पैसे इसमें डालो, पैसे दुगना हो जाएगा, तीन गुना हो जाएगा, जल्दी डालो। सारे लोग डालने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद देखते हैं विस्फोट, सब खत्म, सबके पैसे खत्म हो जाते हैं। तो भीड़ को देख कर कि वहां सब लोग जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। अमेरिका में एक बहुत अमीर व्यक्ति है जिसने पैसे यहां वहां इतने अच्छी तरह से डाले हैं कि उसने बहुत बुद्धिमानी से काम लिया है, खूब पैसे बनाए। तो उसका सिद्धांत है कि जहां भीड़ चलती है ना पैसे डालने के लिए, कि पैसे वहां डालो, जहां लोभ है वहां भय होना चाहिए, जहां भय है वहां लोभ होना चाहिए। जहां भीड़ जाती है खबरदार वहां नहीं जाना, क्योंकि वह सब भीड़ चाल में जाएंगे, कुछ गड़बड़ वहां हो जाएगा। लेकिन जहां कुछ नहीं हो रहा है वहां ध्यान करो, ध्यान से देखो कि ये अच्छा जगह है कि नहीं तुम्हारे पैसे डालने के लिए। तो खैर, यहां ये व्यापार का तो कोई प्रवचन है नहीं और न ही हम व्यापार जानते हैं। कहने का तात्पर्य है कि लोग आंख बंद करके दूसरों की नकल करते हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं इसलिए हम भी करेंगे। तो इन चीजों से, ये झुंड बुद्धि से, झुंड मानसिकता से हमें बहुत बच के रहना चाहिए। तो इसको जैसे हमने कहा गडुरिका प्रवाह न्याय कहते हैं। तो आजकल ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो लोगों को गलत रास्ते में ले जाना चाहते हैं, और क्योंकि उनके पीछे जाने वाले लोग जो उनके अनुयायी हैं वो भी अज्ञानी होते हैं, तो दोनों की दशा बहुत ही खतरनाक हो जाती है। इस श्लोक में प्रहलाद महाराज उपदेश दे रहे हैं अपने पिता को। वो क्या कह रहे हैं, नते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णु। यह दुर्भाग्यवश लोगों को पता नहीं है कि उनका वास्तविक स्वार्थ किस में है। स्व अर्थ, अर्थ मतलब लाभ, स्व मतलब अपना, अपना लाभ वास्तव में किस चीज में है, किस कार्य में है, वास्तविक हमारे हित की गति कौन सी है, स्वार्थ गतिम, वो नहीं जानते हैं। वो ये नहीं जानते कि हमारे वास्तव, हमारी वास्तविक हित विष्णु गति है, भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की भक्ति। क्यों नहीं जानते, भई अर्थ दुराशया, बुरी आशाएं उनके मन में भरी हुई हैं। कौन सी बुरी आशाएं, बहिर अर्थ मानिनः, जो बाह्य वस्तुएं हैं, गाड़ी बंगला पैसा चमक धमक कपड़े फोन ये वो, यही अर्थ, यही सबसे लाभदायक है हमारे लिए, यही सक्षम है हमें सुख प्रदान करने के लिए। ऐसी जो एक मान्यता है, इसके कारण दुराशया, बुरी आशाएं हैं, इसलिए लोग सही अपना जो हित है उसको नहीं जानते हैं। तो ऐसा नहीं जानने के कारण फिर क्या होता है, अंधा यथा अंधे ही उपनियमान। तो जब एक अंधा दूसरे अंधे को मार्गदर्शन करता है और कहता है मैं उसी जगह जा रहा हूं, मेरे हाथ पकड़ के चलो, तो मेरे साथ पीछे पीछे चलो, फिर दूसरे अंधे के पीछे तीसरा अंधा व्यक्ति हाथ पकड़ के चलता है, और ऐसे एक के बाद एक अंधे लोग एक के पीछे एक जाते हैं, लेकिन रास्ता दिखाने वाला जो नेता है वो अंधा है, तो क्या होगा? जैसे सारे अंधे एक के पीछे एक चल रहे हैं, तो जब सामने गड्ढा आएगा तो उनको पता नहीं चलेगा, सारे के सारे गड्ढे में गिर जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी इसी तरह से बताते हैं कि इस जगत में अलग अलग समाज के क्षेत्रों में, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, मनोरंजन के क्षेत्र में, खेल क्रीड़ा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आजकल आदर्श और सही नेताओं की बहुत कमी है, अभाव है। अधिकतर जो लोग हैं वो खुद आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे हैं, और जनसाधारण जो प्रजा है वो भी मासूम है और अज्ञानी है, उनको भी नहीं मालूम। इसलिए जो समाज के अलग अलग क्षेत्रों के नेताएं हैं उनके पीछे चल चल के सारा जो समाज है वो नारकीय अवस्था की ओर जा रहा है, और लोग इसे प्रगति कहते हैं, लोग इसे स्वतंत्रता कहते हैं, लोग इसे सुख कहते हैं। परंतु लोग नहीं जानते कि कितनी खतरनाक उनकी परिस्थिति है। तो ये हमें पहचानना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। इस तरह से आंख बंद करके लोगों के पीछे चलना तो ये किसी के भी हित का कारण नहीं है। आजकल जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि ये आध्यात्मिक कत्तल खाने हैं। क्यों? क्योंकि जब बच्चे आजकल के स्कूलों में जाते हैं तो भगवान के प्रति, शास्त्रों के प्रति, हमारे आध्यात्मिक संस्कृति के प्रति जो भी उनकी श्रद्धा आदि होती है उसको नष्ट करते हैं ये लोग। आधुनिक शिक्षण के नाम पे उनको ऐसे ऐसे चीजें सिखाई जाती हैं जो कि वास्तव में बिल्कुल आध्यात्मिक जिस लाभ के नहीं होते हैं। बार ऐसे देखा जाता है कि उनको सामने से बताया जाता है कि इन चीजों का पालन उनको नहीं करना चाहिए, ये अंधश्रद्धा है इत्यादि। तो जब लोग इस आध्यात्मिक या इस आधुनिक शिक्षा प्रणाली से बाहर निकलते हैं, अंदर जब जाते हैं तो मासूम होते हैं, अच्छे संस्कारों से जाते हैं, जब बाहर निकलते हैं स्कूल कॉलेज के बाद में तो वो गृहस्थ भक्त हैं। तो वो हमें बता रहे थे कि आजकल ऐसे बहुत हंसाने वाले लोग होते हैं जो 10-15 मिनट के लिए खड़े होकर कुछ बोलते हैं और लोग इकट्ठे होते हैं उनको सुनने के लिए, तो खूब हंसाते हैं उनको, बहुत सी चीज बोलते हैं, 10 मिनट पर मिनट की बात होती है। तो आजकल ये बहुत लोकप्रिय हो गए हैं, खास करके जो युवा पीढ़ी में, इनको अंग्रेजी में स्टैंड अप कॉमेडियन बोलते हैं। तो ये भक्त हमको बता रहे थे कि आजकल ऐसे कई ये लोग हुए हैं जो ऐसे विषयों का हंसी मजाक उड़ाते हैं जो कि हमारे शास्त्रों में है। कोई द्रौपदी के बारे में कुछ उठा के इसने हंसी मजाक कर ली, किसी ने राम के बारे में कुछ कह दिया, किसी ने, और सारे जो युवा पीढ़ी बैठी है वहां पे सभागृह में वो भी हंसने लगते हैं, उनके लिए मजाक का विषय है। इस तरह से जो भी उनकी थोड़ी बहुत श्रद्धा बचपन से हुई होगी वो भी नष्ट हो जाती है। तो क्योंकि ये आजकल बड़ा एक फैशन है ना, इस तरह से मजाक उड़ाना, ये करना, तो ये सब लोग बह जाते हैं इसमें। इस तरह से आधुनिक शिक्षा प्रणाली हो, आधुनिक सभ्यता हो, इन सब में आज इन चीजों से हमें बच के रहना चाहिए। खास करके जो बहुत से लोकप्रिय लोग हैं, केवल ये लोकप्रिय है इसलिए हम पीछे पीछे जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो भी हमें भगवान से दूर ले जाएंगे उनसे हमें खबरदार रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए। जैसे मंथरा थी, मंथरा जैसे तो बहुत लोग हैं आज। मंथरा ने क्या किया? कैकेयी के मासूम प्रेममय स्वभाव को नष्ट कर दिया। वैसे कई कई श्री जैसे कि श्री राम की माता स्वयं की माता उनसे प्रेम करती थी कौशल्या और सुमित्रा देवी भी, उसी तरह से कई कई देवी भी राम से उतना ही प्रेम करती थी। परंतु मंथरा ने आके इस तरह से कैकेयी का मन बदल डाला, ऐसे विष भर दिया कैकेयी के मन में, धीरे 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 से बात करके करके रात भर प्रचार किया, अपप्रचार किया और कैकेयी का मन बदल दिया। उसी तरह से आधुनिक सभ्यता में क्या हो रहा है, चाहे हमारी शिक्षा प्रणाली हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे यहां वहां हो, समाज में प्रचार इतना बढ़ गया है कि ये सब मंथरा के सारे शिष्य हैं, हमको भगवान राम और कृष्ण से दूर ले जाने के लिए। और प्रतिदिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन बताते जाते हैं, बताते जाते हैं कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। और जो भी एक रोक टोक हो जो अंदर से आती है संस्कारों के प्रति कि नहीं नहीं ये सही नहीं, वो धीरे धीरे से टूट जाता है। जैसे पहले तो कई कई विरोध कर रही थी मंथरा का, नहीं नहीं मंथरा तुम क्या कह रही हो, राम से तो मैं इतना प्रेम करती हूँ, राम बिल्कुल सही वही योग्य व्यक्ति है और ये तो हम सबके लिए बड़े खुशी की बात है कि राम अब युवराज बनने वाले हैं आज। लेकिन जैसे जैसे मंथरा बात करती गई तो धीरे धीरे से कैकेयी के मन में जो विचार थे, जो स्नेह था, वो कम होते गया। उसी तरह से हमारे बच्चे आते हैं समाज में, पहले से थोड़े अच्छे संस्कार होते हैं, फिर बाहर का जो प्रचार प्रसार चलता है धुआंधार प्रचार प्रसार, तो बच्चे बड़े होते 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 सारी संस्कृति नष्ट हो जाती है। फिर ये लोग जिनकी संस्कृति नष्ट हो गई है वो आगे चल के उनके बच्चे होते हैं, फिर वो अपने बच्चों को संस्कार भी नहीं दे पाते, फिर उनकी दशा क्या होगी उनके बच्चों की। इस तरह से अंधा यथांधे उपनियमाना ते पीश तंत्र्याम उरु दामनि बद्धाः। वास्तव में सभी लोग ईश तंत्र्याम, ईश अर्थात भगवान, तंत्रम अर्थात नियम, तो ये नियम जो होते हैं ये रस्सी के समान होते हैं। ये रस्सियां जो हैं ये सारे बद्ध जीवों को बांध के रखी हुई हैं। तो हम नहीं पहचानते कि हम बद्ध अवस्था में हैं। अज्ञान माया के प्रभाव में आकर ये सब लोग सोच रहे हैं हम मुक्त हैं, हम जो भी मन में आए वो करेंगे। हमारा मन करता है शराब पीना, क्यों नहीं, कौन हमें रोक सकता है, हम पिएंगे। हमें कुछ ऐसे गलत काम करना है, कौन कहता है गलत है, मन चाहता है हम करेंगे। इस तरह से अपने मन माने ढंग से लोग कार्य करते हैं ये सोचकर कि यही स्वतंत्रता है। परंतु मूर्खता के कारण, अज्ञान के कारण वो नहीं समझते हैं कि ये स्वतंत्रता नहीं है, बंधन है, अपने बंधन को बढ़ाए जा रहे हैं। और आधुनिक काल में जितना भी प्रचार प्रसार हो रहा है वो इसी प्रकार का प्रचार हो रहा है, स्वतंत्रता के नाम पर बंधन को बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि जो इस तरह का स्वतंत्रता की प्रचार कर रहे हैं वो सब खुद बंधे हुए हैं। इसलिए तेपीश तंत्र्याम उरु दामनि बद्धाः, तो ऐसे रस्सी से सभी लोग बंधे हुए, तो ऐसे नेताओं से सुनकर क्या फायदा, उनके पीछे पीछे भेड़ की तरह जाके फिर क्या फायदा, हमारा नुकसान ही होगा। और धार्मिक क्षेत्र में भी ये सब चल रहा है, तरह तरह के तथाकथित गुरु तरह तरह की चीजें कहते हैं, कोई प्रचार करते हैं, कोई एक बड़े धर्म गुरु हैं प्रसिद्ध हैं, वो कहते मैंने आज तक भगवद गीता पुराण उपनिषद नहीं पढ़े हैं, ना मुझे पढ़ने में रुचि है, खुलेआम कहते हैं। वैसे ही व्यक्ति जब लंदन में गए थे, हमारे भक्त बता रहे थे, वो खुले सभा में बोल रहे थे कि कृष्ण तो मूर्ख थे, भरी सभा में बोल रहे हैं। और क्योंकि वाक सिद्धि कुछ है उनकी, बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक विषय के ऊपर उनकी टीका टिप्पणियां जो हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, लोग उनके लोकप्रिय बन गए हैं, तो लोग उनके पीछे पीछे जा रहे हैं और ये ऐसी बातें कहते हैं कृष्ण मूर्ख है, भगवद गीता पुराण ये सब क्या है। तो इस तरह से ये भेड़ चाल भी और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसे सच्चा अध्यात्म समझ के लोग उनके पीछे पीछे जाते हैं, क्योंकि सही वस्तु उनको नहीं मिला है। तो इस तरह ये संसार के जो भेड़ चाल है, अंधा यथांधे उपनीय मानव, इससे हमें सावधान रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें किसी के पीछे नहीं जाना चाहिए। बात प्रहलाद जो यहां कह रहे हैं कि गलत व्यक्तियों के पीछे नहीं जाना चाहिए, गलत भीड़ में नहीं रहना चाहिए, गलत संघ में नहीं रहना चाहिए। यदि इस सिद्धांत को समझ के, गडोरे का प्रवाह न्याय को समझ के कोई व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि हमें फिर किसी का भी पीछा नहीं करना चाहिए, अपने मनमाने ढंग से चलना चाहिए, तो वो भी गलत है। गलत लोगों के पीछे नहीं जाना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है, परंतु हमारा मन भी उतना ही गलत है जितना कि और ये सब लोग हैं। इसलिए हमारे मन घटित ढंग से भी हमें कार्य नहीं करना चाहिए, हमें महाजनों के पीछे में जाना चाहिए। महाजनों ये न कतः सपंथा, सही धर्म को समझना है तो क्या करना चाहिए, हमें ऐसे महाजनों के पद चिन्हों में चलना चाहिए जो बड़े संत हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि महाजन कौन होते हैं या महाजनों का के चरण कमलों में चलने का मतलब क्या है। प्रभुपाद जी कहते हैं महाजनों के पद चिन्हों के चलने का मतलब है गुरु साधु शास्त्र के पीछे चलना। गुरु अर्थात जो सदगुरु होते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं, जो सही परंपरागत परंपरा में संप्रदाय में ज्ञान स्वीकार कर चुके हैं, और साधु हैं जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं। तो गुरु साधु शास्त्र इनके कहने पर हमें चलना चाहिए, यदि हमने ऐसे किया तो फिर हम सुरक्षित रहेंगे। जो नकारात्मक चीज है उसको छोड़ना चाहिए, परंतु उसी चीज को सही दिशा में हम यदि लगाएं तो वो सकारात्मक हो जाएगा। जैसे गलत भीड़ में जाने के बजाय हम सही संघ में आ जाएं, जैसे आज हम यहां सब इकट्ठे बैठे हैं, कितने लोग यहां 500 600 जितने भी लोग हैं यहां बैठे हैं, लेकिन ये संघ सही है क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में है, श्रील प्रभुपाद जैसे महाजन के आश्रय में है, हम हैं उनकी छत्र छाया में है, इसलिए हम सुरक्षित हैं। जो भी बातें हो रही हैं वो भी महाजनों के शिक्षाओं के अनुसार हो रही हैं, कोई काल्पनिक मनमाने ढंग से बातें नहीं हो रही हैं यहां पर। तो ये जो है इस तरह से हमें भेड़ी बनना चाहिए, ये भेड़ी सही है, क्योंकि हमारे जो गडरिया हैं, जो भेड़ी का देखभाल करने वाले हैं, वो श्रील प्रभुपाद जी है, वो हमें सही दिशा में ले जाएंगे। सही दिशा में ले जाने वाले व्यक्ति रहेंगे तो आपातकालीन अवस्था में भी ये बहुत लाभदायक होगा, बल्कि ऐसे हम नहीं करेंगे तो आपातकालीन अवस्था में बहुत नुकसान हो सकता है। जैसे समझ लीजिए एक हवाई जहाज में कोई दुर्घटना होने लगती है, तो वहां के जो कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षण मिला हुआ होता है कि आग लगने पर क्या करना चाहिए, यदि और कोई समस्या हुई तो क्या करना चाहिए। तो वहां के कर्मचारियों की बात माननी चाहिए क्योंकि उनको पता है। हम लोग यदि अपने मन माने ढंग से कुछ करने का प्रयास करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। तो यहां पर हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि हम बहुत खतरनाक स्थिति में हैं, हर पल धोखा है, खतरा है, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। अर्जुन पहले भगवद गीता के प्रारंभ में वो सोच रहे थे कि मेरे बुद्धि से मैं कोई निष्कर्ष पर पहुंचूंगा, कोई निर्णय लूंगा, परंतु इतना सब अपना अपनी बुद्धि चलाकर अर्जुन की क्या दशा हुई, वो बिल्कुल टूट गए, द्वंद्व में पड़े थे। फिर भगवान से अंततः हाथ जोड़कर अर्जुन ने क्या कहा, कार्पण्य दोषो भतस्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ चेताः। उनका कृपणता के कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, इसलिए मैं अब आपका शिष्य बन गया हूं, मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करके मुझे निश्चित रूप से बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब तक अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो संबंध था वो मित्रों का था, परंतु अब ये संबंध बदल गया। अब अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना गुरु मान लिया। इस तरह से अर्जुन ने अपना जीवन सफल बना लिया। तो हमें भी इसी तरह से कार्य करना चाहिए, ऐसे महाजनों के बताए हुए आदेशों के अनुसार हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। तब इस भयानक भयंकर जड़ जगत, इस भौतिक जगत के परेशानियों से हम सुरक्षित रहेंगे। महाजनों के आदेशों के पालन करने से हमें कवच मिल जाएगा, तो चुनौतियों का सामना हम कर पाएंगे, दुख के समय भी ये हमें राहत पहुंचाएंगे, तो ये आवश्यक है। परंतु हमें सावधान रहना चाहिए ऐसे लोगों से जो हमें पथभ्रष्ट करेंगे। तो ये है वास्तव में सही भेड़ चाल, परंतु ऐसे भेड़ चाल में भी बुद्धि हमारी ठीक रहनी चाहिए। इसलिए तो हम प्रश्न करते हैं, सद्धर्म परीक्षा, गुरु पादाश्रय और श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम के बाद ये जब महत्वपूर्ण उपदेश रूप गोस्वामी बताते हैं कि गुरु के चरणों का आश्रय लेना चाहिए, गुरु से शिक्षा दीक्षा लेनी चाहिए, ये सब बताने के बाद क्या कहते हैं रूप गोस्वामी, सद्धर्म परीक्षा, सद्धर्म के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। तो जब मन में संशय आते हैं तो पूछना चाहिए सही व्यक्ति से, इस तरह से हमें सही ज्ञान मिल जाएगा, सही मार्गदर्शन मिल जाएगा, नहीं तो पथ भ्रष्ट होने की पूरी संभावना है। और अंत में एक और कहानी से हम इस प्रवचन को समाप्त करेंगे, कि हम जैसे हमने कहा कहानियों का आज थोड़ा भाव है। ये श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताई अपने उपाख्यान उपदेश में। एक गांव था, उस गांव में प्रतिदिन रात को, हर रात को चोरी हो रहा था अलग अलग व्यक्तियों के घर में। जब किसी के घर में चोरी हो जाती और उस घर के आदमी को पता चल जाता तो रात घर के बाहर आके चिल्लाने लगता, चोर चोर चोर। तब तक वो चोर भाग चुका होता था। फिर सारे गांव के लोग इकट्ठे होकर देखते, यहां वहां भागते, कहां गया चोर, कहां गया, लेकिन नहीं मिलता चोर। ऐसे जब कई बार हुआ, अनेक दिनों तक ऐसे चलते रहा, तो गांव के मुखिया ने सोचा कि कुछ करना चाहिए। और गांव के मुखिया ने जाकर हर एक व्यक्ति से बात किया जिनके घर में चोरी हुई थी, कि चोरी होने के बाद जब आप घर से बाहर निकले और आपने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया चोर चोर, तो फिर कौन आए वहां पे, कौन कौन आए, किसने क्या कहा, तो ये सारी बातें उन्होंने बड़े गहराई में सुन ली सबसे। तो सबकी बातें सुनने के बाद इस मुखिया जो बहुत बुद्धिमान था, उसने समझ लिया कि एक व्यक्ति है जो हर बार चोरी होती थी, वो एक व्यक्ति वहां रहता था, और सबसे ज्यादा सवाल करने वाला व्यक्ति, चिंता व्यक्त करने वाला व्यक्ति वही होता था। तो मुखिया को उस व्यक्ति के ऊपर संशय हुआ, तो उसने गांव के पहरेदार को, चौकीदार को कहा कि इसके ऊपर नजर रखना, इसके घर के बाहर तुम रहना और ये तुम्हें देख नहीं पाए, जहां भी ये जाता है पीछे चुपके उसके पीछे पीछे जाना, तो ये चौकीदार बैठा रहा और ये मुखिया स्वयं चौकीदार के पीछे रहते थे, ध्यान रखते थे कि ये अपना काम कर रहा है कि नहीं। तो ये चौकीदार देखता रहा और फिर उस रात को हुआ क्या, रात के 2 बजे चुपके से यही व्यक्ति बाहर निकला, अपने शाल के नीचे उसने ऐसे कोई अस्त्र कुछ रख दिया, शस्त्र आदि रख दिया, औजार कुछ रख दिया जो कि घर को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। और वो एक घर में गया, दीवार को तोड़ के फिर वो अंदर गया और जल्दी से सामान लेकर बाहर निकला। तब तक उस घर के व्यक्ति को पता चला कि चोरी हो रही है, तो वो बाहर आया चिल्लाते चिल्लाते, चोर चोर चोर। तब तक ये चोर जो है, और ये चौकीदार देख रहा था, चोर जंगल की ओर भाग गया। जब ये व्यक्ति आके चिल्लाने लगा तो गांव के लोग इकट्ठे हो गए, तो वो चोर भी आ गया जंगल से बाहर फिर से गांव के अंदर। और चौकीदार को देखकर वो बताने लगा, यही है चोर, चोर पकड़ो पकड़ो चोर को। चौकीदार को ही पकड़ लिया तो सारे लोग चौकीदार को पीटने के लिए आए। फिर उस समय गांव के मुखिया ने देखा, उन्हें सबको समझाया, नहीं 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 ये चोर नहीं है। फिर वो चौकीदार को अलग से ले गए, बताओ क्या बात है। तो फिर चौकीदार ने सारी बातें बताई, तो मुखिया ने कहा कि चलो हम सब जंगल की ओर जाते हैं। तो जो वास्तविक चोर था उसको चिंता हो गई, तो कहने लगा, अरे अरे क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अंधकार में जंगली जानवर है, नुकसान है, अंधकार में क्या दिखाई पड़ेगा, ये वो। तो फिर भी गए अंदर और जो भी चोरी का माल था वो अंदर से निकल पड़ा। और जैसे ही मुखिया बोलने वाले थे ये सही चोर है, वो चोर बड़ा बुद्धिमान था, तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, इधर उधर भागना शुरू किया, उंगली उठा के, वो चोर चोर चोर, तो सब लोग उधर भागे, नहीं नहीं वो चोर चोर, सारे लोग उधर भागे। इस तरह से उसने पूरा परेशान कर दिया सबको, सब लोग भ्रांति में पड़ गए। कभी कभी वो कहता इधर चोर, कभी कहता उधर चोर। इस तरह से हंगामा हलचल मच गया उधर, किसी को पता ही नहीं चला क्या हो रहा, कौन चोर है, सब लोग इधर उधर उधर कह रहे हैं। ये चोर सारा शोर मचा रहा था, चोर मचाए शोर, है ना। तो ऐसे शोर मचा के इधर उंगली दिखा के उधर उंगली दिखा के उसने कितनी भ्रांतियां उत्पन्न कर दी वहां पे, परंतु आखिर मुखिया ने और चौकीदार ने उसको पकड़ लिया और फिर उसको दंड मिल गया। तो ठीक उसी प्रकार में यहां जो साधु होते हैं, वास्तविक साधु होते हैं, वो वास्तविक नेता होते हैं सारे समाज के। सारे समाज को ऐसे साधुओं के पीछे पीछे चलना चाहिए, कभी भी नुकसान नहीं होगा ऐसे संतों के पीछे जाने से। परंतु कोई ऐसे लोग होते हैं जो सारे समाज को भ्रांति में डालते हैं, वो वास्तव में समाज को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, लेकिन साधुओं के खिलाफ ऐसे वैसे कर करके गलत उंगलियां उठा के फिर समाज को भ्रांति में डालते हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमें बच के रहना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें एक ऐसे मार्ग बतलाया है जिसके ऊपर चल के हम निडर होकर हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, यह पूरा विश्वास हमें होना चाहिए। और गलत जो मार्ग हैं, गलत जो हमारे नेताएं हैं, उन ऐसे लोगों के पीछे नहीं जाना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो अभी काफी समय हो गया, क्षमा कीजिए थोड़ी देर हो गई, वैसे भी बाहर बारिश है, आप जा नहीं सकेंगे, तो फिर ठीक है।